अगला क्वेश्चन, लोकसभा की गठन शक्ति एवं कार्य का वर्णन करें। उत्तर, लोकसभा निम्न एवं प्रथम सदन है, यह जनता की सभा है। संविधान के अनुच्छेद 81 में इसके गठन या संरचना का वर्णन है जिसके अनुसार 530 सदस्य राज्यों के मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव से निर्वाचित होंगे। बी, 20 संघ राज्यों के प्रतिनिधि होंगे। इसके अलावा राष्ट्रपति की राय में यदि लोकसभा में एंग्लो इंडियन समाज को पर्याप्त प्रतिनिधित्व तो नहीं मिला है तो वह अनुच्छेद 331 के अधीन उक्त समुदाय के 2 सदस्यों को नामजद कर सकता है। लोकसभा में वर्तमान में 543 सदस्य हैं। इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या 550 है। लोकसभा की शक्ति, अधिकार एवं कार्य निम्न है। विधायी शक्ति, संविधान के अनुसार भारतीय संसद संघ सूची, समवर्ती सूची, अवशेष शक्ति और कुछ परिस्थितियों में राज्य सूची के विषय पर कानून निर्माण कर सकती है। यद्यपि संविधान के द्वारा साधारण अवित्तीय विधेयकों और संविधान संशोधन के विधेयकों के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्ति प्रदान की गई है। संविधान में कहा गया है कि इस प्रकार के विधेयक दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं और दोनों में पारित होने पर ही राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजे जाएंगे। लेकिन इसके साथ ही दोनों सदनों में मतभेद उत्पन्न हो जाने पर राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाए जाने की व्यवस्था है और लोकसभा की सदस्य संख्या अनुच्छेद 108 राज्यसभा की दुगनी से अधिक होने के कारण इस बैठक में विधेयक के भाग्य का निर्णय लोकसभा की इच्छानुसार ही होती है। इस प्रकार कानून निर्माण के संबंध में अंतिम शक्ति लोकसभा है और राज्यसभा साधारण अवित्तीय या संविधान संशोधन संबंधी विधेयक को 6 महीने तक रोके रखने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकती है। वित्तीय शक्ति, भारतीय संविधान द्वारा वित्तीय क्षेत्र के संबंध में शक्ति लोकसभा को ही प्रदान की गई है। इस संबंध में राज्यसभा की स्थिति बहुत गौण है। अनुच्छेद 109(1) के अनुसार धन विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जा सकते हैं, राज्यसभा में नहीं। लोकसभा से पारित होने के बाद धन विधेयक को राज्यसभा में भेजा जाता है और राज्यसभा के लिए आवश्यक है कि उसे धन विधेयक की प्राप्ति की तिथि से 14 दिन के अंदर विधेयक लोकसभा को लौटा देना होगा। 1909(2) के अनुसार राज्यसभा विधेयक संशोधन के लिए सुझाव दे सकती है लेकिन उन्हें स्वीकार करना या न करना लोकसभा की इच्छा पर निर्भर करता है। अनुच्छेद 109(2) के तहत संविधान यह भी व्यवस्था करता है कि यदि वित्त विधेयक पारित होने के बाद 14 दिन के अंदर राज्यसभा सिफारिशों सहित या सिफारिशों के बिना धन विधेयक लोकसभा को न लौटाए तो निश्चित तिथि के बाद वह दोनों सदनों से पारित मान लिया जाएगा। अनुच्छेद 1909(क) के तहत वार्षिक बजट और अनुदान संबंधी मांगे भी लोकसभा के समक्ष ही रखी जाती है। इस प्रकार के समस्त व्यय की स्वीकृति देने का एकाधिकार लोकसभा को ही प्राप्त है। अनुच्छेद 112 और अनुच्छेद 116 के अनुसार कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति, भारतीय संविधान के अनुसार संघीय कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल सदस्य संसद के प्रति उत्तरदायी है। अनुच्छेद 75(3) के तहत मंत्रिमंडल केवल उसी समय तक अपने पद पर रहता है जब तक कि उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। संसद अनेक प्रकार से कार्यपालिका पर नियंत्रण रख सकती है। संसद के सदस्य मंत्रियों से सरकारी नीति के संबंध में वो सरकार के कार्यों के संबंध में प्रश्न तथा पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं तथा उनकी आलोचना कर सकते हैं। संसद सरकारी विधेयक अथवा बजट को अस्वीकार करके, मंत्रियों के वेतन में कटौती का प्रस्ताव स्वीकार करके अथवा किसी सरकारी विधेयक में कोई ऐसा संशोधन करके जिससे सरकार सहमत न हो अपना विरोध प्रदर्शित कर सकती है। वह काम रोको प्रस्ताव पास करके भी सरकारी नीति की त्रुटियों को प्रकाश में ला सकती है। अंतिम रूप में लोकसभा के द्वारा अविश्वास का प्रस्ताव पास करके कार्यपालिका अर्थात मंत्रिपरिषद को उसके पद से हटाया जा सकता है। इसके अंतर्गत ही लोकसभा संघीय लोक सेवा आयोग, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, वित्त आयोग, भाषा आयोग व अनुसूचित जाति और एसटी आयोग की रिपोर्ट पर विचार करती है। संविधान संशोधन संबंधी शक्ति, लोकसभा को राज्यसभा के साथ मिलकर संविधान में संशोधन का अधिकार भी प्राप्त है। संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान के अधिकांश भाग में संशोधन का कार्य अकेली संसद के द्वारा ही किया जा सकता है। इस संबंध में प्रक्रिया यह है कि संशोधन का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है और प्रस्ताव के पारित होने के लिए आवश्यक है कि उसे संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल बहुमत अथवा उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों की 2/3 बहुमत से पारित किया जाए। संशोधन प्रस्ताव के संबंध में संसद के दोनों सदनों में असहमति होने पर प्रस्ताव व अस्वीकार समझा जाएगा। संविधान संशोधन के प्रस्ताव पर विचार के लिए संसद के दोनों सदनों को संयुक्त बैठक बुलाने का कोई प्रावधान नहीं है। निर्वाचक मंडल के रूप में कार्य, लोकसभा निर्वाचक मंडल के रूप में भी कार्य करती है। अनुच्छेद 54 के अनुसार लोकसभा के सदस्य राज्यसभा के सदस्यों तथा राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के साथ मिलकर राष्ट्रपति को निर्वाचित करते हैं। अनुच्छेद 66 के अनुसार लोकसभा और राज्यसभा मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है। लोकसभा के द्वारा सदन के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को निर्वाचित तथा उन्हें पदच्युत भी किया जाता है। जनता की शिकायतों का निवारण। लोकसभा के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होकर जाते हैं अनुच्छेद 326 के तहत, अतः उनके द्वारा जनता की शिकायतें, जनता के विचार तथा भावनाएं सरकार तक पहुंचाई जाती है। लोकसभा के सदस्यगण इस बात की भी चेष्टा करते हैं कि सरकार अपनी नीतियों का निर्माण एवं कार्यों का संपादन जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए करे। उपर्युक्त कार्य ही लोकसभा सबसे अधिक प्रमुख रूप से करती है। विविध कार्य। पहला, लोकसभा और राज्यसभा मिलकर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकती है, यह अनुच्छेद 61 के तहत। दूसरा, उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए यदि राज्यसभा प्रस्ताव पास कर दे तो इस प्रस्ताव का लोकसभा द्वारा अनुमोदन आवश्यक होता है, यह अनुच्छेद 67 के तहत। तीसरा, लोकसभा और राज्यसभा मिलकर सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव ला सकती है, यह अनुच्छेद 124 के तहत। चौथा, राष्ट्रपति द्वारा संकट काल की घोषणा को एक महीने के अंदर संसद से स्वीकार कराना आवश्यक है, अन्यथा इस प्रकार की घोषणा एक महीने के बाद स्वयं से समाप्त मान लिया जाता है, यह अनुच्छेद 352(4) के तहत कहा गया है। पांचवा, यदि राष्ट्रपति सर्वक्षमा देना चाहे तो उसकी स्वीकृति संसद से लेनी होगी। निष्कर्ष, लोकसभा को शक्तियों के उपर्युक्त अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि यदि संसद देश का सर्वोच्च अंग है तो लोकसभा संसद का सर्वोच्च अंग। जनता का प्रतिनिधि सदन होने के कारण लोकसभा संसद का प्रभावशाली एवं महत्वपूर्ण अंग है। व्यवहार की दृष्टि से लोकसभा को वे संसद कह दिया जाए जो अनुचित न होगा।